ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ವಾಸದಿ ಗೌಡ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರಿ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ರಾಮ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಮೈವ ಅಂಶ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೊ ಶ್ಲೋಕ ಹೇ ಲಗಭಗ ಆಜ ಮುಜೆ ಸೇ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ವಿರಾಮ ಹುವಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ಇಸ್ಮೇ ಜೊ ಸಮಜನೆ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ವೋ ಏಕ್ ಹಿ ಬಿಂದು ಹೈ ಕಿ ಹಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಹೈ ಔರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಹಿ ರಹೆಂಗೆ ಅಬ್ ಆಜ ಹಮ್ ಪ್ರಶ್ನ ಕೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ
हरे कृष्ण बाबा किस चरणों में प्रणाम बाबा जैसे हम कृष्ण के अंश हैं और हमें आप बताते गुरु महाराज बताते लेकिन फिर भी हमें संसार में इतना आसक्ति मोह क्यों है
जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ हमारी हिंदी मूवी में बॉलीवुड में मोस्टली ऐसे होता है कि एक बच्चा किसी कारणवश जब छोटा होता है कुछ महीनों का कि अपने माँ बाप से वो बिछड़ जाता है तो कुछ लोग आते हैं जैसे मोस्टली बॉलीवुड में ड्रामा क्रिएट करने के मंदिर की सीढ़ियां हैं वहां से बच्चे को उठाते हैं और उसको बहुत अच्छे से पालते हैं बड़ा करते हैं जवान करते हैं और एक दिन पता चलता है कि एक बूढ़ी स्त्री अचानक आती है उसके जीवन में या उसकी कार की टक्कर हो जाती है अगर मैं डायरेक्टर होता उसी करता को सीन क्रिएट और फिर वो गाड़ी चलाने वाला कहता देख के नहीं चलती हो तो अचानक उस स्त्री की नजर उस लड़के के गले में पड़ती है जो उसको बचपन में उसने तावीज डाला होता है फिर एक फ्लैशबैक में गाना चलता है जो बचपन में उसने गाया होता है और उस बच्चे को भी लगता है ये गाना मैंने कहीं सुना है फिर एक बहुत इमोशनल सीन क्रिएट होता है और फिर पता चलता है कि यही उसका बिछड़ा हुआ बच्चा है और मां कह के लिपट जाता है और फिर क्या करता है वो उनके घर चला जाता है जिसने उसको पाल के बड़ा किया है ये अपनी मां को लेकर चला जाता है मां के पास चला जाएगा हाँ उनका थैंक यू बोलेगा कि आपने मुझे पाला बड़ा किया लेकिन थैंक यू कि आपने फिर से मेरी मां को भी तो मिला ऐसे हमें जब पता चलता है कि हम जिनके साथ बचपन से रहे वास्तव में उनके तो हम हैं ही नहीं देखो ये बात बड़ी सीरियस है और समझ लीजिए कि हम उनके हैं ही नहीं उनके कब बने आज मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं उनके कब बने जब हमने जन्म लिया जैसे ही जन्म लिया कहा अरे मेरा बेटा बेटा पैदा हुआ बेटी पैदा हुई और इतना किस क्या पड़ गया मोह पड़ गया गले से लगाएंगे लोरी सुनाएंगे दूध पिलाएंगे लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा अबॉर्शन गर्भपात गर्भपात या अबॉर्शन कौन करवाता है मां बाप ही तो करवाते हैं क्यों करवाते हैं कि उस समय उस बच्चे ने जन्म नहीं लिया होता इसलिए उसमें उसका कोई मोह नहीं होता इसलिए खुशी खुशी जाते हैं और अबॉर्शन करा के आ जाते हैं गर्भपात करवा के आ जाते हैं क्योंकि उस समय उन्होंने उसको देखा ही नहीं लेकिन जैसे ही उसका जन्म हुआ उनका मोह पड़ गया तो ये सब जन्म के बाद और मरने के पहले के रिश्ते हैं जन्म के बाद और मरने से पहले, क्योंकि जैसे जन्म से पहले किसका रिश्ता नहीं होता तो अबॉर्शन क्यों करा देते, होता तो बच्चे को मार क्यों देते। तो जन्म से पहले किसी का रिश्ता नहीं और मरने के बाद किसी का रिश्ता नहीं, अगर मरने के बाद किसी का रिश्ता हो तो उसको जला के क्यों आएंगे। देखो ये सेंस वाली बातें कर रहा हूं, जो समझ में आने वाली बातें, कोई अंधविश्वास की बातें नहीं कर रहा हूं, ये रात दिन जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। ये किसी किताब शास्त्र को तो अभी मैंने बोला ही नहीं है कुछ, भाई जन्म से पहले कोई रिश्ता होता है हो तो अबॉर्शन क्यों कराए। कौन ऐसे मां बाप है जो अपने बच्चे के टुकड़े टुकड़े करवाएगा, लेकिन जन्म से पहले करवा देते। हो सकता है सुनने वालों में किसी ने करवा दिया हो, शक्य कलयुग। तो क्यों करवाया, क्योंकि उस समय उससे कोई इमोशनली कोई रिश्ता ही नहीं था। और मरने के बाद किसी का कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उसको जला देते हैं। तो ये जो हमारा मोह पड़ता है, ये तो देखने की बात पड़ता, पहले क्यों नहीं पड़ता, पहला होता तो कोई अबॉर्शन कराते ही नहीं। आज हमारे मुंबई में ही एक गवर्नमेंट रिपोर्ट आई थी, कितनी ज्यादा अबॉर्शन हो रही, और वो भी दुर्भाग्य से टेनेजिस में। इसका मतलब हुआ कि जो भी रिश्ते हैं वो जन्म के बाद और मरने के पहले के हैं। मरने के बाद किसी का कोई रिश्ता नहीं और जन्म से पहले किसी का कोई रिश्ता नहीं। अगर जन्म से पहले ही रिश्ता होता तो मां अपने बच्चे को मरवाती कैसे, दुनिया में अबॉर्शन होते ही नहीं। हमारे इंडिया में दुर्भाग्य से बहुत ज्यादा है, समझ आई। तो ये जितने ही रिश्ते हैं ये जन्म के बाद और मरने के पहले, अगर मरने के बाद भी रिश्ता होता, देखो सुनो, मैं यहां बैठा था जहां ये लोग बैठते हैं, एक माता एक लेडी मेरे पास आई, बोला बापू मेरा हस्बैंड मर गया है 6 महीने हुए हैं, लेकिन अधिकतर रात को मुझे दिखता है और मैं घर में बिल्कुल अकेली होती हूं और दिखता है और मुझे ऐसे करता है। तो बोला बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है, अगर वो जिंदा होता और ऐसे ऐसे करता तो हम क्या करते, खुश होते, अरे पति बुला रहा है। और मरने के बाद दिखता है और ऐसे ऐसे करता है तो डर लगता है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्योंकि लोग मुझसे छुपाते नहीं, सत्य बोलते। अभी ये कुछ है 15-20 साल पहले एक किसी के घर में गया था, तो बेडरूम में देखा उसकी वाइफ की इतनी बड़ी फोटो थी, 20x25 उससे भी बड़ी, और बिल्कुल बेड के सामने, और हंस रही थी, शायद हनीमून की होगी, और संयोग से उसकी वाइफ मर गई। और 2-3 महीने के बाद फिर मैं गया तो एग्जैक्ट मैंने देखा फोटो वहां से हटाया, तो मैंने पूछा ये फोटो तूने क्यों हटाया, पूरा सच कहूं बापू मैं यहां सोता था ना तो ऐसा लगता था मेरे सामने देख रही हो, मुझे डर लगता था। ये सत्य की बात बता रहा हूं। इसका मतलब है कोई भी रिश्ते पैदा होने से पहले नहीं होते हैं और मरने के बाद भी नहीं होते। ये आ रही समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अगर पैदा होने से पहले रिश्ता होता तो अबॉर्शन कोई नहीं करता, और मरने के बाद रिश्ता होता तो कोई जलाता नहीं। ये रिश्ता है और हमने उनमें मोह डाल दिया है। अच्छा एक बात बताओ, मोह पड़ा क्यों है? मोह मतलब अटैचमेंट क्यों है, इसकी वजह बताओ। कि जितने रिश्तेदार हैं इस सत्य मानो, ये हमारे अपने कर्म के फल है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक लड़की के कई रिश्ते आते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लड़का आता है और हां हो जाती है। उसी लड़के के साथ उसकी हां क्यों हुई, जबकि रिश्ते तो उसके बहुत आए थे। एक लड़का है, उसकी फैमिली वाले पर्टिकुलर एक लड़की को देखते ही हां बोल देते, जबकि उस लड़के के रिश्ते तो कईयों के साथ चले थे। इसका मतलब हुआ कि वो जिस लड़की से उसका रिश्ता हुआ या जिस लड़के से उसका रिश्ता हुआ, उसके प्रारब्ध के कर्म के फल जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मां बाप, आप सोचो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर पैदा हुआ और एक बच्चा किसी धारावी की झोपड़ियों में पैदा हुआ। एक ही दिन, एक ही तारीख और एक ही तिथि। लोग कहते हैं इस तिथि में पैदा होने वाले के सितारे नक्षत्र बहुत ही बुलंद है। तो जिस दिन धीरूभाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी पैदा हुआ, उस दिन कितने पैदा हुए होंगे दुनिया में? तो फिर उस हिसाब से तो सभी की राशि एक ही होगी ना। तो फिर सबकी राशि एक है तो सब फिर तो रिलायंस के मालिक क्यों नहीं बने? कितने राशि का बड़ा फल लगता है। एक बच्चा 10:20 पे उल्लासनगर में पैदा हुआ, तो क्या उस समय 10:20 पे उल्लासनगर थाने में कोई बच्चे नहीं पैदा हुएंगे? तो उस हिसाब से सबकी राशियां कैसी है? एक जैसी, तो फिर तो सबका जीवन भी एक जैसा होना चाहिए। फिर क्यों नहीं होता, कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा। और मैं सही कह रहा हूं, हम लोग के पास जैसे हमारा मोबाइल है ना, उसमें जितनी कैपेसिटी होती है उतना हम उसका यूज भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं। बस इनकमिंग आउटगोइंग एसएमएस और फेसबुक और एक्स और व्हाट्सएप, बस ये कुछ फीचर पता है, बाकी कितना है हमें नहीं पता होता। इससे ही हमने खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए, बाकी कितना है कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा है कि मैं इसी के घर क्यों पैदा हुआ, मेरी इसी से शादी क्यों हुई, ये बच्चा मेरे ही घर क्यों आया, या ये आदमी दूसरों से तो अच्छा चलता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, कभी नहीं सोचा। बस खाया पिया, बच्चे पैदा किए और मर गए, बस खत्म। तो सोचो ना कि भाई जब मुकेश अंबानी धीरूभाई के घर पैदा हुआ, उसी क्षण, उसी एग्जैक्ट डेट, उसी समय कितने बच्चे पैदा होंगे? फिर सबों को अरबोपति होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा हुआ। या दुबई का राजा जिस दिन पैदा हुआ होगा, उस दिन पता नहीं उस क्षण उस तिथि में कितने पैदा हुए होंगे। तो एक तो दुबई का राजा है और हो सकता है दूसरा दुबई में कहीं मजदूरी कर रहा हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक मीराबाई का भजन है, मीरा कहती है कि ये जो कर्म है ना, इसका साथी कोई नहीं है। क्या बोला? कर्म का साथी कोई नहीं है, ये कर्म अकेला है। जिसे उसने अपने भजन में कहा है कि एक गाय के दो बछड़े होते हैं, एक गाय के दो बछड़े होते हैं, एक बछड़ा जाके खेतों में किसान के साथ हल जोतता है और दूसरा बछड़ा शिव जी के मंदिर में नंदी बन के जिसकी पूजा होती है। गाय का दोनों बछड़े एक ही गाय के हैं, लेकिन कर्म एक दोनों के नहीं है, एक किसान की मार खा रहा है और दूसरे की नंदी की पूजा हो रही। एक डाली के दो फूल हैं, एक फूल टूटता है भगवान की सेवा में लगता है, एक फूल टूटता है किसी की अर्थी पे जाता है। कर्म अकेला है। एक मट्टी के दो घड़े बनते हैं, मटके। एक मटके से शिव जी की पूजा हो रही है, दूसरा अर्थी के आगे लोग लेके घूम रहे। कर्म हमेशा अकेला होता है, कर्म हमेशा अकेला होता है। दादा जुमणावल मुझे याद है, भगवान उनको आत्मा को आनंद दे, गोल मैदान पे एक भीख मांगने वाला इतना ऐसे मेला कुचेला, हाथ में डंडा, साथ चल भी नहीं पाता था। मुझे कहने लगे बापू इसने और मैंने प्रैक्टिकल लाइफ दोनों ने साथ चालू की थी, आज देखो तो ये भीख मांग रहा है और मुझे भगवान ने फैक्ट्रियां दी। दोनों ने बोले एक साथ आप ही के क्लास फेलो, जो आप ही के साथ स्कूल पढ़ते होंगे, यहां तक कि आपके साथ कॉलेज से भी पास आउट हो गए होंगे, लेकिन एक देखो तो कहां है और एक देखो तो कहां है। हो सकता है कभी ऐसा भी संयोग बना हो कि एक बॉस बन गया और दूसरा उसी की यहां नौकरी कर रहा है, ऐसा भी होता है। कर्म हमेशा अकेला होता है, इसलिए मीरा ने कहा कर्म का संगाती अर्थात कर्म का साथी कोई नहीं, कोई भी नहीं। तो हमारा मोह क्यों पड़ गया? क्योंकि अगर हमारा मोह नहीं पड़ेगा तो हम अपने कर्म भोगेंगे कैसे? देखो कई स्त्रियां ऐसी जिसका पति उसको बहुत तंग करता है लेकिन वो छोड़ नहीं पाती, और अगर छूटना होगा तो एक पल में, मतलब कर्म भोग ले एक क्षण लगेगा छूटते हुए। कई ऐसे पुरुष है जो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकते, जो कि उसका तंग करती, खून पीती है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्यों? उसको अपने कर्म भोगने, और वो पत्नी उस समय उसका कर्म का रूप लेके आई, उसका पति उस समय उसका कर्म का रूप लेके आए, उसके बच्चे उसके कर्म का रूप लेके आए, उसके पेरेंट्स उसके कर्म का रूप लेके आए। तो इसलिए हमारा मोह पड़ जाता है कि हम अपने कर्म भोग सके। मोह नहीं होगा तो क्या होगा? थोड़ा कोई दुख होगा तो क्या बोलेगा? चल भाई तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन फिर कर्म कैसे भोगेंगे? इसलिए क्या पड़ गया? मोह पड़ गया। और एक बात और याद रखो, जिस पे जितना ज्यादा मोह मतलब उसका कर्म का फल आप पे ज्यादा है, ज्यादा है। इसलिए यू हैव टू फेस, आपको वो उसको करना पड़ेगा, छोड़ नहीं पाओगे। ये मोह इसलिए है, मोह कर्म भोगने में सहायता करता है, क्योंकि कर्म तो है भोगने पड़ेंगे। इसलिए जब हमें गुरु कृपा होती है और उस गुरु कृपा के माध्यम से क्या होता, ओम ज्ञान तिम्रांदस्य ज्ञानंजन श्लोका चक्षुरून मिलितम येना तस्मै श्री गुरुवै नमः। मेरे गुरु महाराज ने मेरी आंखें खोल दी, जिसे इंग्लिश में कहते आई ओपनर, आईस ओपनर कहते हैं। मेरे गुरु महाराज ने मेरी आंखें खोल दी, तो आंखें खोल के क्या हुआ? पता चला वास्तविकता क्या है, वास्तविकता क्या है। तब उस वास्तविकता के कारण हमारा मोह आस्था आस्था कम होता चला जाता है। जैसे जैसे हमें रियलाइजेशन होती है वैसे वैसे हमारा मोह कम होता चला जाता है। और एक वक्त आता है, वो भी हरि कृपा हो, तो वो मोह वहां से ट्रांसफर राधा वृंदावन चंद्र में हो जाता है। अब वो मोह कर्म था और ये मोह कृपा है। जब आपका कृष्ण में मोह हो जाए, जब आपका हरि कथा में मोह हो जाए, अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं जब आईसीयू में था तो मुझे लगा तो सत्संग नहीं होगी। नहीं, सत्संग कैसे नहीं होगी, वो मेरा क्या है, एक मेरा मोह है, जिसे कहते पैशन, पागलपन। तो फिर आईसीयू हो या आईसीआईसी बैंक हो, हम तो अपनी ड्यूटी में लगे पड़े। क्योंकि याद रखना, हम जो कमा रहे हैं, सुन क्या बोला, हमें भी नहीं पता किसी के भाग्य का कमा रहा है, हमें नहीं पता है कि किसी के किसके नसीब का हम कमा रहे हैं, वो हमको नहीं पता। आप जब घर से अपना वॉलेट जेब में डाल के निकलते हो तो पैसे आपके होते हैं, लेकिन किसके नसीब के हैं वो आपको नहीं पता। हो सकता है बाहर जाकर कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाए जिसको देखते ही आपका मन 50 रुपए देने का हो जाए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि 2-3 मांगने वाले आते हैं, उसमें से किसी एक को देते हैं, दूसरे दो को नहीं देते, ऐसे की। और मसीह की बात यह है कि कुछ लोग इतने अहंकारी होते हैं, अकड़ू, कि वो भिखारी को बोलेंगे माफ करो बाबा, बोलते हैं ना। जनरली हमारे इंडिया में तो यही देखा, कोई बाबा बाबा दे दे तो हम क्या बोलते हैं, माफ करो बाबा। भिखारी से माफी मांगेंगे, लेकिन रिश्ते में कभी गलती होगी कभी माफी नहीं मांगेंगे। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं किशन भैया। कभी कभी मांगने वाले आते तो जनरली लोग क्या बोलते हैं, माफ करो बाबा, मैंने तो ये सुना है, माफ करो माफ करो। अरे कहां है, माफ करो। जबकि उससे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, उससे कोई आपका संबंध भी नहीं है, ना ही उसके प्रति आपने कोई भूल की है कि उसको कहते माफ करो, ना उससे रिश्ता, ना उससे नाता, ना उसके प्रति कोई भूल, फिर भी क्या करोगे, माफ करो। लेकिन जिसके प्रति रिश्ता है, जिसके प्रति नाता है, और जिसके प्रति आपने भूल की है, फिर भी आप कभी माफी नहीं मांगोगे, वहां तो अहंकार बीच में आ जाएगा। और कभी कभी हम कहते तो बोले मैं क्यों माफी मांगू, माफी मांगे मेरी जूती, मैं क्यों मांगू। कितने बेवकूफ लोग भिखारी से बोलेंगे, आपने सुना होगा ना, कभी कोई भिखारी आ गया तो हम क्या कहते, माफ करो। अरे भाई क्यों माफ करो, उसका ना तुमने कुछ बिगाड़ा है ना गलती की है, माफी मांगते हो। लेकिन जिसके प्रति तुमने गलती की है, जिससे तुम्हारा रिश्ता, उससे कभी नहीं बोलोगे माफ करो, वहां तो तुम अकड़ में रहो। बल्कि एक बात याद रखो, अहंकार, घमंड माफी मंगवा कर संतुष्ट होता है। क्या बोला, अहंकार, घमंड माफी मंगवा के संतुष्ट होता है, और प्रेम माफी मांग के संतुष्ट होता है। तो भिखारी को आज देखना, कोई भिखारी आता हम क्या कहते, माफ करो बाबा, माफ करो। और कभी कभी तो बोल, माफ करो ना, उसको क्यों माफ करे, तुमने उसका कुछ बिगाड़ा, गलती की, उससे माफी मांगोगे। लेकिन जिससे गलती की है, जिससे तुम्हारा रिश्ता है, उससे कभी माफी नहीं मांगोगे। इसलिए हम बड़े अजीब और गरीब लोग हैं। तो हमारा मोह इसलिए हो जाता है कि हम वो अपने कर्म को, लेकिन जैसे गुरु कृपा होती है वो मोह आस्ता आस्ता कम होता चला जाता है। और वो जो कम मोह हुआ होता है, वो मोह वृंदावन चंद्र में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम जो रोज आते हैं यहां, ना हमें रेवड़ी मिलती ना गंडेरी मिलती। वो एक, मैं बचपन में मेरे दोस्त लोग एक कहावत कहते थे, रेवड़ी का भाई गंडेरी, एक कहावत होती थी। तो ना रेवड़ी है ना गंडेरी, फिर यहां क्यों आते हैं? क्यों आते हैं कि कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हमारा वृंदावन चंद्र में मोह है, हरि कथा में हमारा मोह है, हरि कीर्तन में हमारा मोह है, गुरु वचनों में हमारा मोह है, गुरु वाणी में हमारा मोह है, सतगुरु में हमारा कहीं ना कहीं मोह है, तभी आते हैं। और अब क्या होगा, यहां मोह बढ़ेगा तो वहां कम होगा, वहां कम हुआ मतलब कर्म कटे हैं। जैसे कर्जा कम हुआ तो ब्याज भी कम हुआ, कर्जा कम हुआ तो ब्याज भी, ब्याज कम होने का मतलब है कर्जा कम हुआ। संसार में मोह कम करने का मतलब है कर्म कटे हैं, तभी तो मोह कम हुआ। और जब वहां से कम हुआ तो यहां बढ़ा, तो यहां बढ़ा मतलब कृपा हो रही है, तभी बढ़ रहा है। कृपा हुई तब वो कर्म कटे, वहां कटे तो वहां से हटे, वहां से हटे तो यहां जुड़े, ये कृपा होती है। आई समझ में? नित्य भजो, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।